जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। पेज नंबर 205 निकालो। कलश 192। मैंने हटाया तुमने फिर वहीं कर दिया, फिर हटा पीछे पीछे हटा जाते। पढ़ो भाई बंदर छेदार। न्याय शास्त्र में आदौ मध्य वसाने च मंगलम भासतम बुधई, आदि में मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने का विधान है। उसी नियम के अनुसार ये मोक्षाधिकार समाप्त हो रहा है और इसमें मंगलाचरण किया गया है। ये आत्मख्याति के जितने भी मंगलाचरण हैं वो सभी मंगलाचरण ज्ञान को ही, ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार करने वाले हैं। अब वो ज्ञान ज्योति क्या है? सम्यक ज्ञान है, आत्मानुभूति है या केवल ज्ञान है, या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है? विभिन्न स्थानों पर इनके विभिन्न प्रकार के विशेषण दिए गए हैं, जिनसे कभी तो लगता है कि ये केवल ज्ञान ज्योति है, कभी लगता है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा रूप ज्ञान ज्योति है, और कभी लगता है सम्यक ज्ञान रूप ज्ञान ज्योति है। तीनों ही को लगाओ क्या अंतर पड़ता है? एक द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से है, एक पर्याय की सत्यता प्रकट करने की दृष्टि से है, वो एक पूर्णता की दृष्टि से है। और यहां ये कह रहा है देखो, बंध छेद से मुक्त हुआ है। बंधाधिकार पहले आया था ना, और उसके बाद में आया था मोक्षाधिकार, और मोक्षाधिकार के आरंभ की गाथाओं में ये बात कही थी, या कुछ किसी को अंदाजा? क्यों अपने नहीं, क्या कहा था शुरू की गाथाओं में? ये कहा था कि बंध के विचार करने से, चिंतमन करने से बंध का नाश नहीं होता। जैसे कोई आदमी बेड़ियों में जकड़ा पड़ा हो और वो कितना ही विचार करे, सोचे जाने कि मैं बंधा हूं, ऐसा बंधा हूं, मजबूत रस्सी से बंधा हूं, तो उससे बंधन से मुक्त नहीं होगा। बंधन से मुक्त होने की जो विधि है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और उन्होंने की, और वो चर्चा वही है जो अपन कल तक कर रहे थे कि शुद्धोपयोग निरपराध दशा है ना, अप्रतिक्रमण भाव अथवा निश्चय प्रतिक्रमण भाव, वो सब मुक्त होने की विधि है जो उन्होंने बताई। बहुत से लोग वो ऐसा कहते हैं कि कितना सार लिखा कि बंधन के विचार से बंधन नहीं कटते, बंधन को काटने से बंधन कटते हैं, ख्याल में है ना। और इसलिए फिर वो कहते हैं कि बंधन काटने का उपाय है कि व्रत करो, उपवास करो, सील पालो, संयम पालो, तीर्थ यात्रा करो, और जो भी जितने भी अनुवृत्त महावृत रूप व्रत हैं उन्हें वो बंधन के काटने का उपाय समझते हैं। जबकि यहां पूरे अधिकार में उनकी तो बातें नहीं है, यदि उनकी बात है तो उनकी धुनाई की गई है बस। उनकी चर्चा जहां आई है वहां इसी अर्थ में आई है कि वो धर्म नहीं है, उससे कर्म कभी कटने वाले नहीं है, इसी रूप में आई है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इस अधिकार के अंत होते होते एक छंद लिखा और जिसमें ये आरंभिक चर्चा की है, निकालो आपके इस पेज में मैंने दिया है, पेज नंबर 208। हाँ पढ़ो भाई। अरे भाई 23 सवैया है, 31 नहीं। प्याला टुकिया रु कामरिया पर ताज तिहू पर कोतर दार। फिर पढ़ो।
जो नर को प्रयोजन बंधन बंद स्वरूप लगे दुख कारी, चिंत करे नित कैम कट यह तो छिद नहीं टिकारी, छेदन को गरी आयुध सारे चलाए निशंक करे दुर्धारी,
आ गया समझ में, कितना स्पष्ट। वो जो शुरू शुरू में गाथा में बात करी थी अधिकार के अंत में, उसको फिर उन्होंने दोबारा याद किया। क्या? जैसे कोई नर मनुष्य प्रयोदृढ़ बंधन मजबूत बंधन में पड़ा हुआ है, और बंध ऐसा वो आदमी बंध स्वरूप लखे बंध के स्वरूप को जानता है और उसे ये दुखकारी है ऐसा भी जानता है, वो चिंत करे दिन रात चिंता करता है कि केम ही कटे, कि कैसे कटे ये बंधन, तो छिदे नहीं नेक चकारी, तो भी वो कर्म का बंधन छिदता नहीं है। माने कर्म के बंधन को जानने से, कर्म के बंधन के बारे में चिंतन करने से, कर्म का बंधन दुखकारी है ये जानने से, ये सब बातें करने से भी कर्म कटते नहीं है। ये आ गया ना भूषण अपन ने जो पढ़ा था, जो नर को ऊपर दृढ़ बंधन बंध स्वरूप लख दुखकारी, चिंत करे नित्य कैम कटे यह तो छिदे नहीं, छेदन को गई आवध धाय चलाय निशंक करे दुई धारी। उसको छेदने के लिए आयुध हथियार को लेकर धाय माने दौड़े पुरुषार्थ पूर्वक, वो चलाए उस हथियार को निशंक पने से चलाए और उसके दो टुकड़े कर दे, दुधारी दुधारी तलवार कहते ना, दो तरफ धार जिसकी हो चलाए ना। ऐसे ये तो तीन पंक्ति में तो हुआ उदाहरण, और एक पंक्ति में है सिद्धांत। अब इसमें आ जाएगा ना वृत्तशील संयम, तब तो आ जाना चाहिए ना। ठीक है, क्या लिखा है देखो, यों बुद्ध बुद्धि धसाए, अपनी बुद्धि को कहाँ धसा दे, प्रज्ञा श्रेणी कहाँ, वो जो बीच में संधि संधि होती है ना सांध में, प्रज्ञा क्षेत्री स्थितेयम पातिता सावधानी, कौन शब्दों का प्रयोग, यों बुद्धि बुद्धि धसाए और दुधा करी और दो टुकड़े कर दे। क्या कर्म रु आत्म और कर्म और आत्मा के दो टुकड़े अलग अलग कर दे और आप गहारी और आत्मा को पकड़ ले, इस विधि से कर्म करेंगे। एक पंक्ति में पूरा मोक्ष अधिकार का स्वरूप बता दिया। अब एक दफे और पढ़ लें। कौन सा सबैया है? तेईसा। इसका दूसरा नाम क्या है? मत गयन्य, मदोन मत जो हाथी है वो डोलता डोलता चलता है ना, ऐसा चलता है। और देखो इसमें क्या है, आठ मगन होते हैं, कौन गण होते हैं, जिसमें एक अक्षर दीर्घ होता है, दो अक्षर ह्रस्व होते हैं, या दीर्घ है और लटकू है ना, है ना, ऐसा इसका नियम है। हाँ समझे ना, ऐसे छंद बनता है, एक अक्षर बड़ा दो अक्षर छोटे, एक अक्षर बड़ा दो अक्षर छोटे, ऐसे आठ होते हैं, तो आठ से चौबीस होते हैं ना, इसे तेईस तेईस अंत में फिर वो एक हिस्सा छोड़ देते हैं ना, इसलिए एक कम हो जाता है, इसलिए तेईसा, फिर तेईस अक्षर रह जाते हैं, इसलिए इसे तेईसा सवैया कहते हैं, मतगेन से सवैया भी कहते हैं। और वो प्रसिद्ध है, मैंने बताया ना, या लट्टू की अरु कामर या पर राज पिहू पर कौतज डारों और कोट के हु कल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारों, इसकी राय यो बुद्धि यो बुद्ध बुद्धि दशाए यो मन, इस प्रकार बुद्ध माने बुद्धिमान व्यक्ति। अरे यार जल्दी क्यों करते हो, यो बुद्ध माने बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार ज्ञानी धर्मात्मा, बुद्धि दशाए ये है प्रज्ञा चैनी, ये बुद्धि, और दशाए माने डाले है ना, और दुधा करी और उसके दो टुकड़े कर दे, एक कर्म एक आत्मा, कर्म को छोड़ दे और आत्मा को ग्रहण कर ले, ये विधि है कर्म के नाश की, इसमें कह दी है। अभी अपन लौट के वहीं पहुंचे, बंधत छेदात है ना, कि बंध का छेद कैसे होता है, पेज नंबर 205, बंध छेद से मुक्त हुआ आ गया ना, यह शुद्ध आत्मा निज रस से गंभीर धीर परिपूर्ण ज्ञानमय। वैसे कई दफे चर्चा की है कि जो अपने नायक होते हैं ज्ञान को, यहां नायक बताया है, नायक जानते हो, हीरो, हीरो में सब समझते हैं, नायक में कोई नहीं समझता है? और वे नायक चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऐसा नहीं, जिसको बोलना हो वो हाथ उठाए मैं पूछ लूंगा। देखो जी, हाँ बोल बोल बोल, चल यही क्रम है, यही क्रम है, धीरो दात्त पहला ये है ना, फिर धीरो धत्त, फिर धीर ललित, फिर धीर प्रशांत, ये चार प्रकार के हीरो होते हैं, नायक होते हैं। देखो ये चारों में धीर शब्द लगा हुआ है, चारों में, इसका मतलब ये है कि धीरता कितनी बड़ी जरूरत है, धीरता माने धैर्य, धैर्य की कितनी बड़ी जरूरत है कोई भी काम करने में, वीरता तो नंबर बाद में आता है, पहले धीरता चाहिए। धीरता और वीरता में क्या अंतर है, आक्रमण करने की शक्ति को बोलते हैं वीरता, और आक्रमण सहने की शक्ति को बोलते हैं धीरता। अंतर समझ में आया ना? अब मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो पीटने की ताकत को बोलते हैं वीरता और पिटने की ताकत को बोलते हैं धीरता। पीटने की ताकत हो या ना हो, लेकिन पिटने की ताकत होना चाहिए तो फिर अखाड़े में उतरना। अखाड़े में समझते हो, वो जो पहलवानों का अखाड़ा होता है ना, अब कोई जंग ठोक के खड़ा आ जाए, आ जा आ जा आ जा, और तुम्हें पिटने की ताकत नहीं हो और उसमें कूद पड़ो, और वो एक पढ़े देवर का तो वही बेहोश हो जाओ, है तो क्या होगा, है ना? ऐसे इस दुनिया के अखाड़े में, चाहे राजनीति के हो, चाहे समाज के हो, चाहे धर्म के हो, किसी भी अखाड़े में उतरना हो तो पहले धैर्य चाहिए। कितने की शक्ति चाहिए? और इसके लिए मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है कि राम और चंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जंगल में जा रहे थे। राम और सीता तो अपने जंगल में आराम से रहते थे, और बेचारे लक्ष्मण को सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी। सुरक्षा का काम भी उन्हीं का था कि जब भी आराम से कुटिया में सो रहे हों तो बाहर पहरे देने की ड्यूटी भी उन्हीं की थी, और फिर दोपहरी में जगह जगह जाकर शहर में से पास के नगर से जाकर खाने पीने की व्यवस्था बनाना और जो भी जरूरत थी वो सब वो लक्ष्मण जी करते थे। लक्ष्मण जी एक गांव में गए नगर में, तो वह नगर में ड्योढ़ी पिट रही थी कि जो व्यक्ति युद्ध में हमारी राजकुमारी से जीतेगा हमारी राजकुमारी की शादी उससे होगी क्या, लेकिन जो हार जाएगा वो सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा, फिर वो वापस नहीं जा पाएगा। ऐसा नहीं चाहे जो कोई आ जाएगा, जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, अपने घर वापस आ, ऐसा नहीं। इतना पक्का कॉन्फिडेंस हो तो आना, खेल मत कर देना। अभी जब पहुंच गए राज दरबार में बनी उसके सूचना के, पहरेदार ने रोका तो धक्का मारते हुए घुस गए, ख्याल नहीं ना कौन आया देखा करके, तो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, खड़े हो गए जम के। तो लोगों ने कहा भगाओ इसे, कौन है आया, कहां से आ गया, कुछ भी नहीं। फिर लोगों ने तीर चलाए उन पर, तो उसमें आता है पद्म पुराण पढ़ना, उसमें आता है एक तीर आया तो ऐसे हाथ से पकड़ लिया, दूसरा आया तो इस हाथ से पकड़ लिया, तीसरा आया तो यहां से पकड़ लिया, चौथा आया तो यहां से पकड़ लिया, पांचवा आया तो यहां से पकड़ लिया, छठवां आया तो यहां से पकड़ लिया क्या, और सातवां आया ऐसा दांत खोले और यहां आया दांत से दाब दिया, एक सेकंड चूक जाते तो बस मुझे तीर होते रहे। जब उनने ये हालत देखी तो सब पानी पानी हो गए, किसी पर आक्रमण नहीं किया, और उनका पराक्रम प्रसिद्ध हो गया कि नहीं, क्यों उनने क्या किस बात का प्रदर्शन किया, आक्रमण सहने की क्षमता का प्रदर्शन किया। आक्रमण सहने की क्षमता का प्रदर्शन किया, तो इसमें भी लिखा है देखो, निर्लस से गंभीर धीर परिपूर्ण ज्ञानमय, वो जो हमारी ज्ञान ज्योति है अपने रस से पूरी भरी हुई है, अत्यंत गंभीर है, धीर है, परिपूर्ण है और ज्ञानमय है। कौन सी ज्ञान ज्योति? जो ज्ञान ज्योति बंध को छेद कर और आत्मा को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त करेगी, वो ज्ञान ज्योति ऐसी है। नायक ज्ञान ज्योति बोलते हैं धीर, तो अपनी बात चली धीरोदात, तो धीर के साथ जो उदार हो उसे बोलते धीरोदात नायक। धीर भी हो और उदार भी हो, मतलब बर्दाश्त करने की भी ताकत हो और फिर उदारता भी हो, अपन ने जीत लिया हो और वो अपने कब्जे में आ गया हो, अपन ने नाक पास बांध में यहां बांध के डाल दिया हो क्यों, और उसने अधीनता स्वीकार कर ली, तो छोड़ दो, जाओ भैया यहां का राज तुम ही संभालो, अच्छे व्यवस्थापक हो तुम, बस थोड़ा सा इतना सा टैक्स भेज दिया करना और बाकी तुम आजादी से यहां का राज्य संभालो। इसे बोलते उदारता, धीरोदात्त, समझ में आई ना, बिना आक्रमण किए जीत लिया और फिर उदारता से छोड़ दिया। ऐसे कौन कौन नाटक है धीरोदात्त, जैसे राम, क्यों है धीरोदात्त राम, इसलिए हैं देखो रावण के इतने इतने दुर्व्यवहार को आक्रमण को सबको झेला और अंत में उसी के भाई को राज तिलक करके और लंका का उसे सब दे करके और अपने घर आ गए। कैसे नायक हैं वो, धीरोदात्त और धीरोधत्त, धीर तो है लेकिन उद्दंड है, धीर तो है लेकिन उद्दंड है रावण, धैर्य की तो कोई कमी नहीं है लेकिन उद्दंडता है। धीर ललित, धीर तो है लेकिन रसिया है, कृष्ण अपने अपने धीरता से राज जीता, बस मुरली बजाने में मस्त हो गए, धीर ललित। और चौथा है धीर प्रशांत, कौन है, भगवान महावीर, धीर भी है और शांत है। तो ये जो नाटक एक ज्ञान जो नायक है वो कौन सा है, ये शुरू में ही बताया है, जब अपन वहां पर कर्ता कर्म अधिकार का शुरू में करते हैं ना, धीरोदात्त मनारक कुलम आता ना, ज्ञानम प्रभो मंजति, ऐसा कुछ है ना, तो वहां पर ये जो ज्ञान है वो धीरोदात्त नायक है। तो अभी अकेला धीर लिखा तो उदात्त अपनी तरफ से जोड़ लेना, क्योंकि ये नायक तो वही है ना, बंध छेद से मुक्त हुआ यह शुद्ध आत्मा, निज दृष्टि गंभीर धीर परिपूर्ण ज्ञानमय। मैंने पहले पहले क्या कहा था, सुनो पहले क्या क्या कहा था, कभी कभी तो ऐसा लगता है त्रिकाली ध्रुव की बात हो, कभी कभी ऐसा लगता है केवल ज्ञान हो, कभी कभी ऐसा लगता है सम्यक ज्ञान हो। अब ये कह रहे ना, बंद छेद से मुक्त हुआ यह शुद्ध आत्मा, बंद के छेद से मुक्त हो गया तो त्रिकाली ध्रुव भी कह सकते हो मुक्त हो गया, ये केवल ज्ञानी भी कह सकते हैं, है ना। निज रस से गंभीर धीर परिपूर्ण ज्ञानमय उदित हुआ है अपनी महिमा से महिमामय, ये केवल ज्ञान की बात है, अपनी महिमा से महिमा उदित हुआ है ना, वो तो उदित ही होता है हमेशा, पूर्ण ज्ञान मान केवल ज्ञान जाजुल्यमान मान जलता हुआ केवल ज्ञान, मान अत्यंत प्रकट अचल और अपनी महिमा में लीन, ऐसा यह केवल ज्ञान रूपी दिवाकर दिवाकर मान सूर्य शोभायमान हो रहा है। चलो पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में इसका पद्यानुवाद भावानुवाद कैसे किया है पढ़ो, ये छप्पे छंद है, और छप्पे कैसे बनता है जानते हो, एक लोला और एक उल्लाला इन्हें मिलाओ तो एक छप्पे बन जाता है, एक दोहा और एक लोला इन्हें मिलाओ तो कुंडलिया बन जाती है, दोहे को पलट दो तो सोरठा बन जाता है, सोरठा को पलट दो तो दोहा बन जाता है, मालूम है, बोलो बनाओ दोहा का सोरठा जी, कोई दोहा तो आता होगा, बोलो देख के बोलेगा,
है?
है ना। अब इसको उलट दो तो दोहा बन जाएगा, एक दिल सोटा बन जाएगा। उलटना आता कि नहीं आता? देखो, ई विधि जे पूरन भये अष्टकर्म बनदाई, तिनकी महिमा जो लखे नमे बनारसिताई। ठीक है, अष्टकर्म बनदाई, ई विधि जे पूरन भये नमे बनारसिताई, तिनकी महिमा जो लखे। हो गया, बन जाता है। अभी अपना सन अपना क्या पता है, छप्पे कैसे बनता है? एक रोला और एक उल्लाला। अब पढ़ो इसे, चलो।
क्रम क्रम हो तो सुकल पक्ष ससी, केवल रूप प्रकाश दरस प्रगट पूर्ण सागर थयो, अभी चल अखंड अन भय अख, जीव दरब जगमयी जयो।
तो फिर बोलो,
विधि अनन्य प्रभु सागर प्रगट बूंद सागर थयो, अभी चल अखंड अन भय अख, जीव दरब जगमयी जयो।
हो गया ना। ये नीचे की जो दो लाइनें छप्पे हैं, दो लाइनें हैं, वो हैं उल्लाला, और ऊपर की चार लाइनें हैं, वो हैं रोला। तो एक आध रोला तो दूसरा आता है। बोलो बोलो, कहीं से रोला दूसरा? ये नहीं, दूसरा रोला। हाँ ठीक है। अब भयो शुद्ध अंकुर, शुद्धता का अंकुर पैदा हुआ है। मिथ्यात् मूल नसी गयो, मिथ्यात् जड़ मूल से नष्ट हो गया। क्रम क्रम हो तो उद्योत, धीरे धीरे जो प्रकट हो रहा है। सहज जिन सुकल पक्ष ससि, सहजता से प्रकट हो रहा है। कैसा? जैसे शुक्ल पक्ष का सूरज, शुक्ल ससि चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कैसा होता है? बता, नहीं मालूम? कभी देखा नहीं? शुक्ल पक्ष तो समझता है कि नहीं? क्या शुक्ल माने सफेद, पक्ष माने पक्षी? क्या हो रहा है? पखवाड़ा, पक्ष माने पखवाड़ा, और सफेद माने उजेला, था उजेले वाला। तो दोज को सबसे ज्यादा, अमावस को सबसे ज्यादा अंधेरा, और अमावस को चंद्रमा दिखता ही नहीं, और एकम को भी चंद्रमा दिखता नहीं है। फिर दोज को कभी मुश्किल से दिखता है। जब दोज का चंद्रमा दिखता है तो मुसलमानों की ईद होती है उस दिन। ईद कहते चंद्रमा दिखे तब। अब दोज का चंद्रमा फिर तेज को और बढ़ जाता है, चौथ को और बढ़ जाता है, वैसे बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी को पूरा हो जाता है। ख्याल में आई ना? तो वो उसे बोलते हैं पूर्णमासी। तो इस सूक्ष्म का पक्ष, गुरुदेव बोला करते थे कि बीज उगी छे तो पूर्णमासी थसेज थसे, कि द्वितीय का चंद्रमा होगा है तो वो पूर्णमासी के रूप में होगा ही होगा। ये कब कहते थे? क्योंकि उनका जन्म शुक्ल पक्ष की दोज को था। तो बीज का सम्यक ज्ञान पैदा हुआ है तो पूर्णमासी का केवल ज्ञान होगा ही होगा, ऐसा बोलते थे। बोलते ना, अभी गुरुदेव का तो सुदी में जन्म हुआ था, और भैंसरी का बदी में हूं बैठा। पूर्णमासी को तो खूब पूरा चंद्रमा रहता ही है, और एकम दोज को भी रहता है, और फिर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। इसने लगा ना, शुक्ल पक्ष शशि। देखो ये जो गुजरातियों का महीना अमावस के दिन पूरा होता है और अपने हिंदी भाषियों का महीना पूर्णमासी के दिन पूरा होता है। कभी सुना कि नहीं सुना सुरेश जी? ये बातें भी हमें बतानी पड़ेंगी। गुजराती का महिमा जो है अमावस के दिन पूरा होता है और हिंदी भाषियों का पूर्णमासी। गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि ये हिंदी वालों का सही है, गुजरातियों का नहीं है। कहते थे कि नहीं कहते थे? क्यों? कि वो साफ ही लिखा है अर्धमासी और पूर्णमासी। देखो कि पूर्णमासी का मतलब महीना पूरा हो गया और अर्धमासी माने आधा महीना हुआ है। ऐसा वो खुद बोलते थे, मैंने खुद इन कानों से ही सुना है पूज्य गुरुदेव श्री को। और एक आध लोग अभी यहां और बैठे होंगे कि जिनने भी सुना होगा। क्यों मोटा नहीं सुना? क्या नहीं सुना? सुमन भाई से तो नहीं पूछ सकता। क्यों? कि जब गुरुदेव के प्रवचन होते थे तब तो ये बर्मा शहर संभालते थे। अभी भी वही संभाल रहे। हो गया पूरा, अपन ने पढ़ लिया। क्रम क्रम होत उद्योत सहज जन शुक्ल पक्ष शशि, केवल रूप प्रकाश, केवल ज्ञान रूप प्रकाश हुआ। भासि सुख राशि और अनंत सुख की राशि प्रकट हो गई। ध्रुव के आश्रय से धर्म प्रकट हुआ और कर पूरण स्थिति आयु कर्म की स्थिति को पूरण करके जगत को त्याग कर मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए। ये मोक्ष अधिकार पूरा हो गया। तुम जी मोक्ष में चला गया तो मोक्ष अधिकार प्राप्त हो गया। देखो आप जानते हैं भारतीय संस्कृति का एक नियम है और वो नियम क्या है कि कहानी सुखांत तो होनी चाहिए। नाटक की हो, उपन्यास की हो, कोई भी कहानी हो लिखी जाए उसे सुखांत तो होना चाहिए। ये भरत मुनि ने 2000 वर्ष पहले बताया था। किसने बताया था? कौन से भरत मुनि हैं ये? चक्रवर्ती? अरे यार तुम मत बोला करे, तो हमारे सबसे बड़े अध्यापक हो, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। ये नाथ जो है ना जो काव्य शास्त्र है उसके सबसे पहले आचार्य हैं जो 2000 वर्ष पहले हुए हैं। फिर बाद में तो बहुत आचार्य हुए, कुंतल, अब तुमने नाम ही नहीं सुने होंगे, हम किन किन के नाम बताएं। अलग अलग संप्रदाय हुए, वक्रोक्ति संप्रदाय। इसमें झगड़ा पड़ा कि काव्य की आत्मा क्या है। तो भरत मुनि ने कहा रस है आत्मा, रसम वही आत्मा। फिर आगे आगे कहता है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, कुंतल ने कहा कि वक्रोक्ति काव्य का जीवन है। फिर बहुत बहुत है, होते गए आगे। बड़ी कहानी है 2000 वर्ष की, अब वो नहीं सुनाऊंगा मैं तुम्हें। तो उन भरत मुनि ने ये नियम बनाया कि कोई भी काव्य हो महाकाव्य उसको सुखांत होना चाहिए। ये हिंदुस्तान की पद्धति नहीं है दुखांत कहानी होना, ये तो विदेश से आई है। जो अपने शेक्सपियर के नाटक आए ना, ट्रेजेडी जिन्हें हम बोलते हैं, और कॉमेडी और ट्रेजेडी, ये दो से दो भेद तो विदेशियों के हैं। हमारे यहां तो सब कॉमेडी कॉमेडी ही होती, और हम कॉमेडी हास्यरस को समझते हैं। अरे सुखांत हो वो कॉमेडी, दुखांत हो वो ट्रेजेडी, आप समझे ना? तो मैं आपसे कहता हूं कि ये जितने भी नाटक लिखे जाते हैं और जिन्हें ये सुखांत कहते हैं, ये तो सब भोगांत हैं। ये भोग को ही सुख मानते हैं। कोई भी कहानी लिखेंगे, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितने सिनेमा बनते हैं वो एक स्टाइल पर बनते हैं। आप कहो तो मैं एक सेकंड में तुम्हें हिंदुस्तान में बनने वाले सारे सिनेमाओं की कहानी सुना सकता हूं। सुना दो मैं? कहता सुना दो। दो लड़का और एक लड़की, और धमाधम धमाधम, और एक लड़का मर गया, एक लड़का लड़की की शादी हो गई, खेल खत्म। अरे दो लड़की और एक लड़का, और फिर धमाधम 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 है। फिर उसमें से एक लड़की मर गई, एक जगह शादी हो गई और खत्म। शादी हो गई मैंने सुखांत, अब सुखांत हुआ कि अब ये दुख दुखांत हुआ है। क्यों? जैनियों की कोई कहानी दुखांत नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्य जब तक वो दुख में पड़ता है तब तक कहानी खत्म ही नहीं करते। फिर वहां से मर के वहां गया, मर के सड़क गया, सड़क से मर के एक इंद्री हुआ, फिर एक इंद्री से मर के दो इंद्री, तीन इंद्री, चौ इंद्री, कहानी चलती रहती चलती रहती चलती, जब तक वो मोक्ष में न पहुंचे। क्यों? फिर कहानी खत्म करते ही नहीं। इसलिए जैनियों की हर कहानी असलियत में सुखांत होती है, और अजैनियों की हर कहानी भोगांत होती है, सुखांत नहीं। मैं कहता हूं कि हमारा छेड़ाला एक महाकाव्य है। कैसे महाकाव्य है? महाकाव्य तो इतना बड़ा लंबा लंबा होता है, कम से कम आठ सर्ग होना चाहिए, इसमें छह ही ढाले हैं। पहले ही नियम पूजा नहीं पूरा करता है। अरे तुम ये मानोगे तो रामायण भी महाकाव्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें भी सात अध्याय हैं, आठ उसमें भी नहीं है। भरत मुनि की कसौटी पर तो रामायण भी फेल हो जाएगी, जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। तो क्यों है? क्योंकि हमारी कहानी कहां से शुरू होती है? काले अनंत निगोद मझार, फिर घूमते हुए निकलती है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, दस इंद्री, पांच इंद्री, छह इंद्री, पांच इंद्री, फिर मनोस तरंज से मनोस, मनुष्य से देव, देव से फिर कहा कि मनुष्य आगे, फिर नरक, फिर जाकर के देव में, और फिर मनुष्य प्रभाव धारण किया, मुनि दीक्षा ली, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और रही है अनंतानंत का। सुखांत कहानी पूरी हो गई कि नहीं? किसकी कहानी है? किसकी है? अरे हम सबकी कहानी है ये, अनादिकाल से शुरू है, किसी की खत्म हो गई और किसी की अभी चल रही है। क्यों? खत्म कब होगी राजकुमार? हाँ, जब मोक्ष में जाएंगे, जब अपना अपन तो मोक्ष में पहुंच गए ना, इसलिए मोक्षाधिकार समाप्त हो गया है, अब निकालो सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार। पढ़ो भाई मंगलाचरण, तो पढ़ो सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार का। बताई थी कि जिसमें ये कहा था कि जिस ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है, कहीं कहीं तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा होती है, कहीं कहीं केवल ज्ञान होती है, और कहीं कहीं सम्यक ज्ञान ज्योति होती है। तो पिछला तो केवल ज्ञान वाला था, और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वाला है, क्योंकि सर्व शुद्ध ज्ञान माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो उसमें कितना क्लियर आ गया, ज्ञान पुंज वह शुद्धातम सोहायमान है, आ गया ना, ज्ञान का पुण्य वह शुद्धात्मा, और इसमें आ गया नीचे स्फूर्जति ज्ञान पुंजा, संस्कृत में आया ना स्फूर्जति ज्ञान पुंजा। देखो कर्ता कर्म अधिकार में एक बात शुरू की थी कि ये भगवान आत्मा पर पदार्थों का रागादि भावों का कर्ता और भोक्ता नहीं है, और वो बात एक तरफ रखी रह गई, फिर पुण्य पाप और सब बात चलती चलती रही। अब फिर उसको याद कर रहे हैं एक समय, एक तरीके से ये द्वारा कर्ता कर्म अधिकार शुरू हो रहा है। हेलमेन वो तो जगत के ज्ञानी अज्ञानी और ज्ञानी जीवों का कर्ता कर्म था क्या था, और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का कर्ता कर्म संबंधी बात है कि वो कैसा है हमारा भगवान आत्मा। तो पूरा अब ये ज्ञान पुंज सर्वशुद्ध ज्ञान उसकी चर्चा करनी है ना, तो सबसे पहले उसी को नमस्कार किया। मैंने समझ लो कि मंगलाचरण के छंद में पूरे अधिकार में क्या बात कही जानी है वो बात उसमें आ जाती है, वे उसको आचार्य उसको बराबर ध्यान में रख लेते हैं और अंत में फिर एक बार सबको याद दिला देते हैं। पहले कहते हैं अब ये कहेंगे और अंत में क्या कहते हैं अब हमने ये कह दिया है। नीत्वा सम्यक तिलय मखयान कर्तृभोक्त्रादि भावान, कहते जिन्हें कर्तृभाव और भोक्तृभाव इन संपूर्णों को अखिलान माने संपूर्ण, संपूर्ण कर्तृभाव कर्तापन की बुद्धि और भोक्तापन की बुद्धि इनको प्रलयम सम्यक नीत्वा, इनको प्रलय करके भले प्रकार, सम्यक माने भले प्रकार, नीत्वा माने करके, क्या करें प्रलय, प्रलय माने जानते हो क्या होता है लय माने होता है नाश होना, समझे ना। अब उसमें प्रा उपसर्ग लगा है उसे प्रलय, अब हमने बारह भावना लिखी है ना तो उसमें आता है पर्याय लय धर मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है, ठीक है ना। वहां पर लय धर्मा कहा पर्याय को, प्रा हटा दिया वहां है ना, क्यों, क्योंकि प्राप्त प्रा जो जहां उपसर्ग लगता है तो उसमें क्या होता है वो सम्मान सूचक है, माने उसकी महिमा बढ़ जाती है। अब जिसका नाश करना है उसकी क्या थी महिमा है, पर्याय को पर्याय लय धर्मा, और यहां कर्तव्य भोक्तित भाव को नाश करना है पूरी तरह से, प्रलय मच जा जैसे बन गए युग के अंत में प्रलय मच जाता है, मैं भागने को जहां पर रास्ता नहीं मिले इस तरह एकदम। तो अखिलान कर्तृ भोक्तृदि भावान सम्यक प्रलयम नीत्वा, भले प्रकार से प्रलय करके कर्तापन और भोक्तापन के भाव को भले प्रकार से प्रलय करके, दूरी भूता प्रतिपद मयम बंध मोक्ष प्रलप्ते। अब बंध मोक्ष अधिकार अभी अभी निकले है ना, तो याद आ जाए भूल नहीं पाते हैं, थोड़ी थोड़ी याद आती है ना, तो कहते हैं कि बंध और मोक्ष की जो कल्पना है जो बात चल रही थी वो प्रतिपद मयम दूरी भूता, प्रतिपद प्रतिपद जानते कदम कदम पर, प्रतिपदम माने कदम कदम पर यह इसको दूर करती हुई है ना, और शुद्धा शुद्धा मान द्रव्य से शुद्ध पर्याय से शुद्ध, दो 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 शुद्धा है ना, तो एक द्रव्य से शुद्ध और एक पर्याय से शुद्ध, स्वरस बिसरा पूर्ण पुण्या अतलार्थी, अपने रस से पूरी तरह से भरा हुआ आपूर्ण अत्यंत पवित्र ऐसा तंकोत्कीर्ण है महिमा जिसकी, ऐसा ज्ञान पुंज शोभायमान हो रहा है। इसे बोलते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। अपन तो क्या समझते हैं मंगलाचरण माने बस ना भगवान महावीर को नमस्कार हो इसको नमस्कार हो, उसको मंगलाचरण में तो नमस्कार किया, ऐसा कुछ नहीं है। मंगलाचरण में नमस्कार, मंगलाचरण में आशीर्वाद भी दिया जाता है, लेकिन आशीर्वाद आत्मा की मंगलाचरण है। ये ज्ञान ज्योति निरंतर उदय को प्राप्त हो, ये क्या है? खुश रहो, खुश रहो, जिंदगी भर खुश रहो, तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। कहां अरुण भगवान को मंगलाचरण आशीर्वाद दे रहे, त्रिकाली ध्रुव को आशीर्वाद दे रहे। अरे भाई, आशीर्वाद माने क्या होता है? अरे किसी का भला चाहना, तो उसमें क्या हो गया? ऐसे तो सैकड़ों जगह मिलेंगे अपने यहां, तो हर जगह कोई नमो नमः 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 नहीं है, ऐसा बहुत मिलेगा कई जगह कई तरीके से। देखो, जिसने कर्तृ भोक्तृ भाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है, है अपार महिमा जिसकी टंकोत कीर्ण जो, ज्ञान पुंज है शुद्ध शुद्धातम। कितना सीधा सरल पद्यानुवाद है, बोलो क्या छोड़ा? एक शब्द नहीं छूटा ऊपर का, और एक अनुवाद नहीं करना है, और सीधा गद्य में पढ़ते जाओ, पढ़ा समझ में आ जाएगा, है ना? जिसने कर्तृ भोक्तृ भाव सब नष्ट हो गया, बस करने की जरूरत नहीं है इसका। देखो, वो ये कह रहे हैं कि सर्व शुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, लिखा ना ऊपर, अतः प्रवसति सर्व विशुद्ध ज्ञानम। सर्व विशुद्ध ज्ञान अब प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है? रंगमंच पर। कौन सा रंगमंच? संसार के रंगमंच पर अब शुद्ध सर्व शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा। देखो, इस सर्व शुद्ध ज्ञान ने प्रसिद्ध किया, तो अभी कहते हैं जीवाधिकार, जीव अजीब का भेष बना के आया था, दोनों ने मिलकर एक वेश बनाया था, इसलिए जीव ने कर्ता का वेश बनाया था, अजीब ने कर्म का वेश बनाया था, पुण्य पाप के वेश बनाए थे, आश्रम का वेश बनाए थे, सब स्वांग थे। स्वांग माने वेश, पहले वो होते थे जो आते थे वो बहुरूपिया, तो स्वांग बना के आते थे। तो आचार्य कहते हैं कि ये सब स्वांग थे, और अब ये स्वांग नहीं है, वो असली रूप प्रकट होके आ गया है। वो बहु रुपया होता था ना, मालूम आपको, तो रोजीना आकर एक एक स्वांग दिखाता था, कभी पुलिस इंस्पेक्टर बन के आता है, कभी कुछ कभी कुछ। फिर जब वो 10 दिन पूरे स्वांग बता देता था, तो 11वें दिन फिर वो असली वेश में आता था, बहु रुपया के वेश में, और फिर वो सबसे चंदा लेता। मैंने 10 दिन दिखाया है और उसकी फीस लेता था, तो उसे पुरस्कार कब मिलता था? जब वो स्वांग बना के आता था तब नहीं, जब वो असली रूप में प्रकट हो जाएगा तो ही उसे। तो कहते हैं अभी ये सब स्वांग थे मोक्ष तक, मोक्ष भी स्वांग था, असली रूप नहीं था। अब ये सर्वसिद्ध ज्ञान ये स्वांग नहीं है, उसका ये असली रूप है। अब असली रूप में भगवान आत्मा प्रकट हो रहा है, इसलिए देखो ये दोहा ये मैंने ही लिखा है शायद, उक्त भाव है स्वांग सब सर्वशुद्ध स्वभाव, स्वांग नहीं वह मूलता आत्म वस्तु स्वभाव। ये बात इस दोहे में डाली है, ख्याल नहीं ना, कि वे सब स्वांग थे और एक कोई स्वांग नहीं है। अब ये वस्तु का असली स्वरूप प्रकट होने वाला है, तो अब इस सर्व विशुद्ध अधिकार में सर्व शुद्ध ज्ञान प्रकट होने वाला है। और अब 194 कलश जो अगली गाथाओं का उत्थानिका का कलश है, वो तो मंगलाचरण का था, इसको अपन कल ही पढ़ेंगे और फिर अपन ये गाथाएं शुरू करेंगे। ये समय सार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने इन्हीं गाथाओं की टीका में से निकाली है। कहां से कैसे इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।